उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि पूरे शहर में उसे ढूंढते हुए अविनाश को पूरे 15 साल हो चुके थे। अब आगे, अब जल्दी ही चौकीदार काका उस वक्त अविनाश के साथ मौजूद था और एंजल ने स्केच आर्टिस्ट बुला लिया था, और जल्दी ही चौकीदार काका ने जिस तरह से आस्था को देखा था उसी तरह से आस्था का स्केच बनाना शुरू कर दिया था। इस बीच अविनाश की एक कॉल आ गई थी। उसे कॉल अटेंड करने के लिए जैसे ही वो बाहर गया, क्योंकि वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसके दादाजी अधिराज के केयरटेकर की थी, क्योंकि अविनाश ने सख्त इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि उसके दादाजी की हेल्थ अपडेट सीधा सीधा उसे फ़ोन पर दी जानी चाहिए। तो अब जैसे ही फ़ोन आया, अविनाश फ़ोन सुनने के लिए वहां से चला गया था। इस बीच वो बुज़ुर्ग व्यक्ति काका जिस तरह से उस स्केच आर्टिस्ट से फ़ोटो बनवा रहे थे, अब एंजल को ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि अगर इस तरह से आज उस लड़की का चित्र बन गया तो उसे लड़की को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और फिर अविनाश उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसलिए एंजल ने मौका देखकर उस बुज़ुर्ग काका का ध्यान थोड़ा सा भटका दिया था और बिल्कुल उनके सामने जाकर बैठ गई थी और बार बार उसे बोलने लगी, क्या उसके गाल मेरे जैसे थे, क्या उसके लिप्स मेरे जैसे थे। ऐसा बोलकर बार बार एंजल उस बुज़ुर्ग काका का ध्यान भटकाने लगी थी, और जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी, क्योंकि आस्था की आँखें तो वो बुज़ुर्ग काका अच्छे से बनवा चुके थे। लेकिन अब क्योंकि एंजल उसके सामने थी और बार बार अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी, तो इसकी वजह से उसके जैसा मिलता जुलता चेहरा, गाल, उसके लिप्स बनवा दिए थे। अब एंजल ने आस्था की फ़ोटो थोड़ी सी डिफरेंट बनवा दी थी। अब जल्दी ही स्केच तैयार हो गया था, और क्योंकि वो तो बुज़ुर्ग थे, जैसे ही उन्होंने स्केच देखा उन्होंने बोला, हाँ हाँ, ऐसे ही वही लड़की है। लेकिन एंजल ने थोड़े से डिफरेंट करवा दिए थे जिससे आस्था की पूरी शक्ल चेंज सी हो गई थी, लेकिन उसकी आँखें चेंज नहीं हुई थी। अब जैसे ही जल्दी अविनाश ने वो स्केच देखा तो उसकी आंखें भर आती हैं, और आस्था की आंखों को देखने के बाद उसे उसमें से अपनेपन की फीलिंग आई, और वो मन ही मन में खुश होकर बोला, ज़रूर यही मेरी बहन है, और उसने उस स्केच को चूम लिया था। एंजल ने जैसे ये देखा वो जलकर राख हो गई थी। लेकिन तभी अविनाश ने स्केच वापस से एंजल को देते हुए कहा, इसके काफ़ी सारे स्केच पूरे शहर भर में लगवा दो और साथ ही साथ पूरे 50 लाख का इनाम रख दो। जो कोई भी हमें इस स्केच वाली लड़की के बारे में खबर देगा उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, पूरे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जैसे ही एंजल ने सुना उसकी तो आंखें हैरानी से फैल गई थी, लेकिन फिलहाल उसे अपने बॉस की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। कहीं ना कहीं उसे इस बात का भी सुकून था कि उसने थोड़ी सी डिफरेंट वो फ़ोटो बनवाई थी। वो फ़ोटो प्रॉपरली आस्था की तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ, पूरे 50% उसमें से आस्था की झरित ज़रूर मार रही थी। वहीं दूसरी ओर, अब एक गहरी और काली रात के बाद एक बड़ी ही खूबसूरत सी सुबह हो गई थी। सब लोग क्योंकि पूरी रात करीब करीब जागे थे तो सभी देर से सोकर उठे थे। नानी माँ ने सबके लिए अपनी निगरानी में सबकी पसंद का ब्रेकफास्ट बनवाया था, क्योंकि कल रात भी किसी ने कुछ भी ढंग से खाना नहीं खाया था, और इसीलिए आस्था के लिए भी उन्होंने अलग से खाना बनवाया था। क्योंकि जब से अरमान ने आस्था की देखभाल अपने हाथों में ली थी, आस्था को वो बिल्कुल न्यूट्रिशन वाला और साथ ही साथ उबला हुआ खाना बनवा खिला रहा था। वो बिल्कुल डॉक्टर की डाइट के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन नानी माँ जानती थी कि इस हालत में थोड़ा सा तीखा, कभी भीखा, कभी मीठा, हर तरह का खाना खाने का दिल कर सकता था, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने खाना बनवाया था और साथ ही साथ पौष्टिकता का उन्होंने पूरा ध्यान रखा था। करीब 10 बजे के करीब सभी लोग अब अपने अपने कमरों से नीचे आ गए थे। अरमान और आस्था भी एक साथ तैयार होकर नीचे आ गए थे। आस्था, रश्मि, साथ ही साथ राधिका, तीनों ही एक साथ एक जगह बैठी हुई थी और तीनों के ही चेहरे मुरझाए हुए थे। नानी माँ का दिल बार बार भरा रहा था, क्योंकि उन्हें वो दिन याद आ रहा था कि किस तरह से चारों बिटियाँ आपस में मिलकर मौज मस्ती कर रही थी, डांस, नाच, गाना कर रही थी। पूरे के पूरे सिंघानिया मेंशन की रौनक इन लड़कियों से ही थी, लेकिन आज सिंघानिया मेंशन की रौनक ही उदास थी। सभी काफ़ी ज़्यादा उदास थे। वहीं दादाजी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, क्योंकि जब से आस्था अरमान की ज़िंदगी में आई थी पूरे घर में एक अलग ही तरह का माहौल था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब अचानक से इतना कुछ हो गया कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से सिचुएशन को फेस करेंगे। वहीं दूसरी ओर आहान, जो कि गहरी नशे में था, लेकिन अगली सुबह उसका सारा नशा उतर चुका था, उसका सर भारी हो रहा था, और वो जिस हालत में सोया था, बिना कपड़े चेंज किए, बिना नहाए धोए, उसी हालत में वो सीधा नीचे आ गया था। ध्रुव, आकाश तो पहले ही नीचे आ गए थे, सुमित भी वहां मौजूद था, और रह रहकर वो घूर घूर कर राधिका को देख रहा था।
राधिका ने जिस तरह से कल रात उसके साथ बर्ताव किया था तो उसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए उसने डिसीजन लिया था कि वो राधिका को झुका कर रखेगा। जिस तरह से राधिका पहले उसके पीछे प्यार प्यार शादी शादी का रट लगाकर घुमा करती थी, एक बार फिर वो उसे इसी तरह से घुमाएगा। अब आहान एक कुर्सी पर बैठ गया था और सर पकड़ते हुए चिल्लाया, राजेश मेरे लिए नींबू पानी लेकर आओ। वेल, अरमान को पता चल चुका था कि ध्रुव और सुमित आहान को किस हालत में घर लेकर आए थे। भले ही अरमान का ध्यान उस वक्त आस्था पर था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो उससे छुपा रहा हो। वेल, जल्दी ही राजेश एक ट्रे में नींबू पानी लेकर वहां मौजूद था। ध्रुव ने खुद नींबू पानी आहान को दिया था। आहान की हालात अब काफी बेटर थी और कल रात जो कुछ हुआ, धीरे धीरे उसे सब याद आ रहा था कि उसने किस तरह का बर्ताव किया था और किस तरह से उसने कितने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। वेल, धीरे धीरे अब आहान ने सबको देखना शुरू कर दिया था और जैसे ही उसकी नजर रश्मि, आस्था और राधिका पर पड़ी तो उसने अपनी नजरें झुका ली थी। आहान को यूं शर्मिंदा देखकर आस्था को कुछ अच्छा नहीं लगा था, वहीं रश्मि को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो सब इस सिचुएशन में उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक नानी माँ उठी और सबकी ओर देखकर बोली, देखो बच्चों, बहुत हो गया, अब बस। इस तरह से हमें घर में मायूसी भरा माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आस्था बिटिया, तुम्हें तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जो हो गया सो हो गया, शायद ऊपर वाले की उसमें मर्जी थी, और अंत भला तो सब भला, रौनक बिटिया की जान बच गई, इससे ज्यादा हमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए, तो आप सब भी इसे एक बुरे ख्वाब की तरह भूल जाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो। चलो फटाफट से सबके सब खा लो, हमने आप सबके पसंद का नाश्ता बनवाया है। आस्था बेटा आओ, बेटा आप सब भी आओ। ऐसा बोलकर नानी माँ सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाने लगी, लेकिन तभी आहान अपनी हालत को नोटिस करते हुए बोला, वो नानी माँ, मैं शावर लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वहां उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में जाने लगा था। वहीं नानी माँ के ज्यादा ही इंसिस्ट करने पर सबके सब डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गए थे, लेकिन अभी तक किसी ने एक निवाला तक नहीं लिया था। तभी अचानक एक जोरों से चीखने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। सबके हाथ जो कि कुछ ना कुछ खाने पर जा रहे थे, अचानक वहीं के वहीं रुक गए थे और सभी के मुंह से सिर्फ एक साथ एक नाम निकला, रौनक, कक कक कक। और सभी अब दौड़ते भागते हुए आहान के कमरे में जाने लगे थे। वहीं जैसे ही दरवाजे के पास गए तो ये देखकर पूरी तरह से चौंक गए, अंदर से दरवाजा लॉक था। अब तो रश्मि हैरान हो गई, क्योंकि लास्ट टाइम वही सबसे लास्ट में उस कमरे से गई थी।
तो फिर दरवाजा अंदर से किसने लॉक कर दिया? तो क्या इसका मतलब रौनक को होश आ चुका है? अब रौनक चीख पड़ी। कहीं ना कहीं जैसे ही रश्मि ने ये सोचा तो उसे अब रौनक की और चिंता होने लगी थी और वो जोरों से दरवाजा खटखटाने लगी थी। रौनक बेटा प्लीज, दरवाजा खोलो मेरे बच्चे, दरवाजा खोल मेरी बहन। सभी रौनक से दरवाजा खोलने की गुहार लगाने लगे, दरवाजा खोलो। आस्था और राधिका भी बार बार लगातार दरवाजा पीटने लगी थी। वहीं रौनक इस वक्त खुद को समेटकर एक कोने में बैठी हुई थी। फ्लैशबैक, रौनक को थोड़ी देर पहले ही होश आया था। जैसे उसे होश आया, उसका सर पूरी तरह से भारी था और वो सर पर हाथ उठाकर सोचने लगी कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। और तभी रौनक को अपने जिस्म के प्राइवेट हिस्से में बहुत ही भयानक दर्द महसूस हुआ। रौनक हैरान हो गई, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से टूटा हुआ सा लग रहा था। अब जैसे उसने अपनी आंखें बंद की, एक एक करके उसे, उसका बिहेवियर, उसे उसके कपड़े उतारना, आहान का उसे संभालना और फिर आहान का उसके साथ इंटीमेट होना, ये सारी बातें एक एक करके जैसे ही रौनक की याद आती हैं, रौनक ने जोरों से चीख मार दी, प्रेजेंट। और वो चीख सुनकर सब वहां जमा हो गए थे। अब रौनक ने दरवाजा नहीं खोला तो आहान भी पूरी तरह से दरवाजा खटखटाने और पीटने लगा था। लेकिन रौनक ने दरवाजा नहीं खोला था, क्योंकि खुद वो तो अब बहुत ही ज्यादा डरी सहमी सी बैठी हुई थी, गहरे सदमे में थी और उसने अपने आप को चादर से पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ था और वो आहान के कमरे के एक कोने में छुपे हुए बैठी थी। उसे इस वक्त बहुत डर लग रहा था, वो बुरी तरह से घबरा रही थी। तभी अरमान बिना किसी इमोशंस के आकाश की ओर देखकर बोला, दरवाजा तोड़ दो। जैसे ही अरमान ने ये बोला, बिना देरी किए आहान और आकाश दोनों ने एक साथ एक एक किक मारी थी और दरवाजा टूट चुका था। और क्योंकि अब जैसे ही दरवाजा टूटा और सब अंदर गए और उन्होंने रौनक को देखा, लेकिन रौनक बेड पर नहीं थी। तभी आस्था की नजर कोने में बैठी हुई रौनक पर पड़ी थी। रौनक को इस तरह से देखकर आस्था पूरी तरह से हैरान हो गई थी और जल्दी से उसके पास गई, रौनक, रौनक क्या हुआ है तुम्हें? रौनक, रौनक अब रश्मि और राधिका वो भी रौनक के पास चली गई थी, लेकिन रौनक पूरी तरह से चीखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं गंदी हो गई हूँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। और रोते बिलखते हुए रौनक सबसे अपना हाथ झटकते हुए चिल्लाती रही। ऐसा बोलकर अब रौनक अब उन्हें अपने आप से दूर करने लगी थी। वहीं रौनक को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर सभी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वहीं आहान तो एकदम पत्थर के जैसा जम चुका था। रौनक बिल्कुल भी संभाले नहीं संभल रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो करे तो करें क्या, क्योंकि रौनक को बहुत गहरा सदमा लगा था।
क्योंकि इस एक्सीडेंट ने रौनक की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी थी। आस्था, रश्मि, राधिका रौनक को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। रौनक लगातार उन्हें अपने आप से दूर कर रही थी, सबको अपने आप को छूने से भी रोक रही थी। अब तब अरमान आगे बढ़ता है। उसने राधिका, रश्मि, साथ ही साथ आस्था को वहां से हटने के लिए कह दिया था और खुद घुटनों के बल रौनक के पास बैठा और बड़े ही प्यार से उसने रौनक के सर पर हाथ रखा और उसकी परवाह जताते हुए बोला, शांत हो जाओ रौनक, मैं हूं यहाँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, तुम मेरी छोटी बहन के जैसी हो, शांत हो जाओ, तुम्हारा भाई यहाँ है। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया ने ये कहा, रौनक ने एक पल अरमान की ओर देखा, लेकिन अरमान की आंखों में उसे खुद के लिए अपनापन, सुकून सा और सेफ स्पेस सा महसूस हुआ। अब रौनक ने खुद को रोक नहीं पाती है, उसने अरमान को गले से लगा लिया था और जोरों से रोना शुरू कर दिया था। रौनक इतनी बुरी तरह से रोता हुआ देखकर जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे सभी की आंखों में आंसू आ गए थे। अरमान सिंघानिया की आंखों की डोनिया भी एकदम लाल हो गई थी कि लेकिन अरमान सिंघानिया को रोना सूट नहीं करता है, तो उसने अपने आंसुओं को जैसे तैसे संभाल लिया था। वहीं रौनक को इस तरह से देखकर स्पेशली आहान की आंखों से आंसू धार धार बह निकले थे, उसकी गर्दन तक आंसू आ रहे थे। ध्रुव की भी आंखें नम थी, सुमित की भी आंखें एकदम लाल हो रखी थी, लेकिन उसने भी अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया था। लेकिन आकाश के आंसू आज बाहर आ गए थे क्योंकि उसकी बीवी भी तो रो रही थी। वो आस्था अब धीरे से आगे बढ़ी और उसने भी रौनक के सर पर हाथ रखा था और वो भी अरमान के साथ साथ रौनक को सेफ फील कराने लगी थी। तब जैसे ही आस्था का हाथ रौनक को अपने सर पर महसूस हुआ, रौनक ने एक नजर आस्था की ओर देखा, फिर अरमान को छोड़कर उसने आस्था को गले से लगा लिया था। धीरे धीरे रश्मि भी अब उसके पास गई थी और उसे संभालने लगी थी क्योंकि वो उसे और खुलकर रोने देना चाहते थे। अगर रौनक नहीं रोएगी तो शायद उसके अंदर का जो दर्द है, जो दुख है, वो उसके अंदर ही अंदर रह जाएगा, तो वो लोग ये नहीं चाहते थे। वेल, कितनी ही देर तक जब रौनक रोती रही, फिर अचानक से उसकी आंखें भारी हो गई थी और जल्दी ही वो अब बेहोश हो चुकी थी। तब रश्मि ने जल्दी से रौनक को संभाल लिया था, उसे बेड पर लेटा दिया और फिक्र भरी आवाज में बोली, अभी इसकी हालत काफी ज्यादा वीक है, अभी इसको और आराम की जरूरत है, मुझे लगता है कि इसको अकेला छोड़ देना चाहिए। जल्दी ही रौनक की बात मानकर राधिका, सुमित, आकाश उस कमरे से बाहर चले गए थे।